तुम उसकी लाइफ पार्टनर हो और मैं एक वक्त पर उसकी बेड पार्टनर थी। लावण्या के बेशर्मी भरे शब्द सुनकर अरुणिमा का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो उसे कुछ कहना चाहती थी, पर तभी आस्तिक वहां आ जाता है। वो वापस से अरुणिमा के पास आकर सोफे पर बैठते हुए कहता है, हो गई मेरी बुराई। उसकी बात पर लावण्या खिलखिलाकर हंसती है और कहती है, कम ऑन आस्तिक, तुम्हारी मजाक करने की आदत अभी भी गई नहीं। मैं क्यों करूंगी तुम्हारी बीवी से तुम्हारी बुराई? इनफैक्ट मैं तो इसे ये बता रही थी कि हम दोनों कॉलेज में कितनी मस्ती किया करते थे। आस्तिक भी मुस्कुराते हुए हवा में हाथ हिलाता है और लावण्या से कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे आज भी याद है। कॉलेज के दिनों में तुम हमेशा मेरे आगे पीछे रहकर मेरा अट्रैक्शन पाना चाहती थी, और कितनी बार तो तुमने मेरे प्रोजेक्ट बनाने में भी मेरी हेल्प की थी। इनफैक्ट ये कहूँ कि मेरा पूरा असाइनमेंट बना दिया करती थी, वो भी बिना मेरे कहे। और बदले में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए था, ये तो तुम अच्छी तरह जानती हो। लावण्या के चेहरे पर हल्की शर्म की लाली आ गई और उसने इस बात को मजाक में उड़ाते हुए कहा, चलो छोड़ो ना, ये सब पुरानी बातें हो गई। तब हम कॉलेज में थे, बच्चे थे, हमें इन सब की समझ नहीं थी, पर अब बात कुछ और है। आस्तिक भी कहता है, हाँ सही कहा तुमने, तुमने मेरे प्रोजेक्ट बनाने में मेरी मदद की थी, और अब यहाँ एक बार फिर मेरी मदद के लिए आई हो। तुम्हारे जरिए मुझे वो मिलेगा जिस पर मेरा हक है। लावण्या बोली, बिल्कुल आस्तिक, जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा, और मैं उसे तुम तक लाने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। तुम जो कहोगी मैं वो करूंगी, इसीलिए जब तुमने मुझे इस काम के लिए कहा तो मैंने तुरंत हाँ कर दी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम बिना वजह मुझे इस काम के लिए नहीं कहोगे, और वैसे भी तुम्हें मना करने की मेरे पास कोई वजह नहीं है। मैं कॉलेज के दिनों में भी तुम्हारी बात मानती थी और आज भी मानती हूँ। तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आस्तिक को लावण्या की बात भले ही नॉर्मल लग रही थी, लेकिन अरुणिमा की नज़रें बस लावण्या पर ही टिकी थीं। आस्तिक से ये सब कहते वक्त वो जिस तरीके से अपने हाथ हवा में हिला रही थी और जिस अंदाज में अदाओं के साथ अपने बाल पीछे कर रही थी, अरुणिमा को पहली नज़र में ही समझ आ गया था कि वो आस्तिक को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है, और ये तो उसके लटकों झटकों की बस शुरुआत है। लावण्या ने जब अरुणिमा को देखा तो उसकी जलती हुई नज़रों को वो महसूस कर चुकी थी। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई और उसने आस्तिक के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आस्तिक, मुझे लगा था कि तुम्हें लंबे बालों वाली लड़कियां कुछ खास पसंद नहीं आती, इसीलिए तो कॉलेज के दिनों में भी तुम्हारी जितनी भी फीमेल फ्रेंड्स थीं उनके छोटे छोटे बाल थे। फिर तुमने ऐसी लंबे बालों वाली लड़की से शादी कैसे कर ली? तुम तो कहते थे कि लंबे बाल रखना एक झंझट है, उन्हें संवारने में टाइम वेस्ट होता है, तुम्हारे लिए तो टाइम ही मनी है। अरुणिमा के हाथों की मुठ्ठियाँ कस गईं जब उसने लावण्या के हाथ को आस्तिक के कंधे पर रखा देखा, लेकिन आस्तिक ने इस बात को नॉर्मल लिया और हंसते हुए कहा, हाँ पहले पहले मुझे भी यही लगता था कि लंबे बाल रखना बस एक टाइम वेस्ट है। वैसे मैं गलत भी नहीं था, मेरी बीवी को बाल बनाने में पूरा एक घंटा लग ही जाता है। जब भी इसे कहीं लेकर जाना हो मैं पहले ही इन्फॉर्म कर देता हूँ कि तैयार हो जाए, ताकि मुझे इंतजार ना करना पड़े। फिर हल्की मुस्कान के साथ उसने अरुणिमा की तरफ देखा और कहा, लेकिन इन सबके बावजूद भी अरुणिमा के लंबे बाल उसे और भी खूबसूरत बना देते हैं, जब ये हवा में लहराते हैं तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। आस्तिक धीरे से अरुणिमा की तरफ देखकर उसकी तारीफ कर रहा था, और अरुणिमा की नज़रें भी खुद ब खुद आस्तिक की तरफ खिंच गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि आस्तिक उसके लिए ऐसा कुछ कहेगा कि वो लंबे बालों में खूबसूरत लगती है। उनकी निगाहें आपस में उलझ गईं, और जब लावण्या ने देखा कि उसका हाथ तो आस्तिक के कंधे पर है, लेकिन आस्तिक की नज़रें उस पर नहीं बल्कि अरुणिमा पर हैं, तो उसने धीरे से अपना हाथ हटा लिया। कुछ देर के आई कॉन्टैक्ट के बाद अरुणिमा ने अपनी पलकें झुका लीं, क्योंकि इससे ज़्यादा वो आस्तिक की नज़रों की तपिश बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन ये चंद सेकंड का नज़रों का मिलन ही आस्तिक के दिल में अब तक दबे अरमानों को जगा गया। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और अगले ही पल अरुणिमा का हाथ पकड़कर उसे भी खड़ा कर दिया। अरुणिमा चौंक गई और हैरानी से आस्तिक को देखने लगी। आस्तिक ने उसकी कलाई थामी और लावण्या की तरफ देखते हुए कहा, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, तब तक तुम चाहो तो आराम कर सकती हो, सरोगेसी के बारे में मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ये कहकर आस्तिक वहां एक मिनट भी नहीं रुका और अरुणिमा का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए ऊपर की तरफ ले जाने लगा। नीचे सोफे पर बैठी लावण्या गुस्से से जल भुन रही थी और तमतमाई नज़रों से दोनों को जाते देख रही थी। कमरे में पहुंचते ही आस्तिक ने दरवाज़ा लॉक किया और अरुणिमा को दरवाजे से सटा दिया। अरुणिमा वैसे ही घबराई हुई थी, क्योंकि जब आस्तिक उसे खींचते हुए ला रहा था तभी उसे एहसास हो गया था कि आज आस्तिक क्या करने वाला है। पर जैसे ही आस्तिक कमरे में पहुंचा, उसने अरुणिमा को दरवाजे से टिकाया और अगले ही पल उसके बालों को कंधे से हटाकर उसकी गर्दन पर अपने दांत रख दिए। अरुणिमा के होठों से एक तेज सिसकी निकली जिसे वो अपने होठों पर दबाकर रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन आस्तिक की उंगलियां उसकी गर्दन पर चलती जा रही थीं और वो उसके हर एहसास को गहराई से महसूस कर रही थी। वो धीरे धीरे उसके जुनून में डूबने लगी थी। एक बार फिर अरुणिमा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं, क्योंकि आस्तिक की तड़प अब पूरी तरह से उस पर हावी हो रही थी और उसकी ये तड़प अरुणिमा के जिस्म में एक नई हलचल मचा रही थी। आस्तिक को खुद नहीं पता चला कि कब वो अरुणिमा के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेस हो गया कि उसकी खुशबू में खोता चला गया।
इस दौरान वो अरुणिमा की गर्दन पर लव बाइट दिए जा रहा था और उसके हाथ अरुणिमा की कमर पर मजबूती से टिके हुए थे। धीरे धीरे उसने अरुणिमा की कमर को पकड़े हुए उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अरुणिमा ने बहुत मुश्किल से अपनी सिस्की को अपने दांतों तले दबाकर रोक रखा था, लेकिन आस्तिक का वो भारी भरकम हाथ उसे अपने जिस्म पर महसूस हो रहा था। धीरे धीरे आस्तिक उसे बेड की तरफ ले जाने लगा। अरुणिमा कब बेड तक पहुंच गई और आस्तिक कब उसे हल्का सा धक्का देकर खुद उसके ऊपर आ गया, ये उसे तब एहसास हुआ जब उसने अपनी आंखें खोली। डर की वजह से वो अपनी आंखें बंद किए लेटी थी। आस्तिक ने उसका चेहरा देखा और हल्की मगर गहरी आवाज में कहा, आंखें खोलो। मैंने कहा ना, जब मैं तुम्हारे करीब रहूं तो मुझे तुम्हारे निगाहें अपने ऊपर चाहिए। तुम देखो कि कौन है जो तुम पर अपना हक कायम रहा है। अरुणिमा डरते हुए अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखों के किनारों पर नमी थी, लेकिन आस्तिक को उसकी आंखों में सिर्फ एक अजीब सी तड़प नजर आ रही थी। यही वो चीज थी जो हमेशा उसे अरुणिमा से बांधे रखती थी। अरुणिमा की उन तड़प भरी निगाहों को देखकर आस्तिक का जुनून एक बार फिर से भड़क उठा। वो उसके ऊपर से उठकर खड़ा हो गया और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। अरुणिमा को अब आंखें बंद करने या अपना चेहरा घुमाने की इजाजत नहीं थी। उसकी निगाहें बस आस्तिक पर ही टिकी रहीं। उसके शरीर पर बने टैटू से पहले डरावने लगते थे, लेकिन इतने दिनों में अरुणिमा को उनकी आदत हो गई थी। असल में कई बार जब आस्तिक अपने पूरे जुनून में खो जाता तो अरुणिमा की नजरें सिर्फ उसके शोल्डर पर बने ईगल टैटू पर टिक जाती। ये भी एक वजह थी जो उसे सबसे बाहर निकालने में मदद करती थी। कुछ समय के लिए वो आस्तिक के दिए दर्द को भूल जाती थी, क्योंकि उस टैटू में कुछ ऐसा था जो उसे रोक लेता था, जैसे वो किसी सम्मोहन में बंध गई हो। कई बार तो वो ये भी भूल जाती थी कि आस्तिक उसके साथ क्या कर रहा है।
इस वक्त भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अरुणिमा की नजरें आस्तिक के शरीर पर बनी उस ईगल टैटू पर ही थीं, जिसकी आंखें उसे सम्मोहित कर रही थीं। उसे पता ही नहीं चला कि कब आस्तिक ने उसके कपड़े उतार दिए और कब वो उसके इतना करीब आ गया। इसका एहसास उसे तब हुआ जब उसने महसूस किया कि आस्तिक एक बार फिर से खुद पर काबू खो रहा है। वो डर गई और आस्तिक को देखने लगी, जो अपनी आंखें बंद किए बस उसे महसूस कर रहा था। आस्तिक की वो तड़प भरी आवाज, उसका बेताब स्पर्श, अरुणिमा उसे पूरी तरह महसूस कर रही थी। लेकिन एक और चीज थी जो उसने महसूस की, और ये सोचकर ही उसकी आंखें अचानक बड़ी हो गईं। वो कुछ कहने या करने ही वाली थी, लेकिन इस वक्त शायद आस्तिक उसकी कोई बात सुनने या समझने के मूड में नहीं था। आस्तिक का जिस्म भारी हो गया था और अरुणिमा की सांसें भी तेज चलने लगी थीं। अपनी पागलपन की हदें पार करने के बाद जब आस्तिक तेजी से सांस लेते हुए थक कर उस पर नजर डालता है तो वो हैरान रह जाता है। अरुणिमा डरी हुई नजरों से उसे देख रही थी, जैसे कुछ बताना चाहती हो लेकिन कह नहीं पा रही थी। आस्तिक अरुणिमा के ऊपर से अलग हटा, लेकिन जैसे ही वो अलग हुआ उसे एहसास हुआ कि अरुणिमा का चेहरा डरा हुआ क्यों है और वो उसे इस तरह निगाहों से क्यों देख रही है। आस्तिक ने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके चेहरे पर हल्की सी शिकन आ गई। शिट, फ्रस्ट्रेटेड होते हुए उसने अपने मुंह से कहा और गुस्से भरी निगाहों से अरुणिमा को देखने लगा। अरुणिमा डर गई कि कहीं आस्तिक उसे थप्पड़ ना मार दे या फिर उस पर चिल्लाने ना लगे, लेकिन अगले ही पल आस्तिक अरुणिमा के ऊपर से हटकर तेजी से सांस लेते हुए बगल में लेट गया। वो आंखें बंद करता है और एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। तुम्हारे मामले में मैं भूल जाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ और किस लिए कर रहा हूँ। प्रोटेक्शन यूज करना तुम्हारे मामले में मुझे याद ही नहीं रहता। आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। अरुणिमा हल्के से अपना चेहरा घुमाकर आस्तिक को देखती है। ये क्या कहना चाहता है कि मेरे मामले में इसे प्रोटेक्शन यूज करना याद ही नहीं रहता? आस्तिक अपने एक हाथ पर सिर टिकाते हुए अरुणिमा को देखकर कहता है, तुम मुझे पागल समझ रही होगी, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ, बल्कि तुमने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से मैं पागल हो रहा हूँ। ऐसा तो नहीं है कि तुमसे खूबसूरत लड़की मैंने कभी देखी नहीं, या फिर तुमसे ज़्यादा हसीन कोई मेरे बिस्तर पर नहीं आई, लेकिन तुम में कुछ ऐसा है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींचता है और मुझे तुम्हारे साथ बांधे रखता है। तुम्हारा जिस्म मेरा जुनून बन चुका है और मैं इस जुनून में कैद रहना चाहता हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ ना तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता। तुम्हारी खुशबू मुझे तुम्हारे करीब रहने पर मजबूर करती है, पर ऐसा क्यों होता है ये मैं नहीं जानता, इसीलिए मुझे तुम्हारी आदत हो रही है। आस्तिक के शब्दों को सुनकर अरुणिमा डरती हुई निगाहों से उसे देखती रही, क्योंकि उसके हर एक शब्द में सच्चाई साफ झलक रही थी। आस्तिक धीरे से अरुणिमा के चेहरे पर अपनी उंगलियां रखता है और उसके होंठों के पास सहलाते हुए उसकी आंखों में देखकर एक डरावनी आवाज में कहता है, और मैं अपनी आदत को बिगड़ने नहीं देना चाहता, इसीलिए भूल कर भी कभी प्रेग्नेंट मत होना। अरुणिमा एकदम से दंग रह गई। मुझे कोई शौक नहीं है आस्तिक से प्रेग्नेंट होने का, लेकिन ये वही इंसान है जिसने अभी अभी कहा था कि मेरे मामले में इसे कंट्रोल नहीं रहता और इसे प्रोटेक्शन यूज करना याद ही नहीं रहता। अगर ये हर बार बिना किसी सेफ्टी के मेरे साथ लव मेक करेगा तो एक ना एक दिन मैं प्रेग्नेंट हो ही जाऊंगी ना। मतलब आस्तिक सही कह रहा है, इसका कोई परमानेंट तरीका ढूंढना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ सोफे पर बैठी लावण्या काफी देर से अपने गुस्से को दबाए हुए थी। उसकी नज़र ऊपर की मंजिल पर ही थी, क्योंकि उसे नीचे वाला कमरा दिया गया था,
इसीलिए वो ऊपर नहीं जा सकती थी। क्या बहाना बनाऊं कि क्यों जा रही हूं आस्तिक के कमरे की तरफ, लेकिन इससे ज्यादा वो खुद को रोक भी नहीं पा रही थी। वो खड़ी हुई, लेकिन जैसे ही ऊपर जाने को मुड़ी उसने देखा कि आस्तिक और अरुणिमा नीचे आ रहे थे। पर ये क्या, उन दोनों ने वो कपड़े नहीं पहने थे जो वो घर पर पहनकर बैठे थे। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे वो कहीं बाहर जा रहे हों। जैसे ही आस्तिक और अरुणिमा हॉल में सोफे के पास आए, आस्तिक ने लावण्या से कहा, लावण्या तुम चाहो तो कहीं शॉपिंग करने जा सकती हो या फिर कोई मूवी देख लो, जो भी तुम्हारा मन करे। लावण्या ने उसे घूर कर देखा। लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो, उसने ठंडी आवाज में पूछा। आस्तिक ने जवाब दिया, अरुणिमा के पापा को होश आ गया है और वो अरुणिमा से मिलना चाहते हैं। अभी अभी हॉस्पिटल से फोन आया था कि इनके पापा होश में आ गए हैं, इसीलिए मैं अरुणिमा को अस्पताल लेकर जा रहा हूँ, लावण्या ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। आस्तिक, इसके लिए तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, अरुणिमा को ड्राइवर के साथ भेज दो। वैसे भी दोपहर में तुमने कहा था कि तुम्हारी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आस्तिक ने घूर कर लावण्या की तरफ देखा और हल्की मगर सख्त आवाज में बोला, तुम तो मुझे कॉलेज के दिनों से जानती हो ना, तो मेरी आदत क्यों नहीं पहचान पाई। कॉलेज के दिनों में भी मेरी यही आदत थी कि अगर कोई मुझे ऑर्डर दे तो वो मुझे पसंद नहीं आता। मैंने किसी को ये राइट नहीं दिया कि वो मुझे बताए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। अगर तुम हमारे वापस आने तक कुछ और नहीं करना चाहती तो यहाँ बैठकर इंतजार कर सकती हो। आग लग जाए मेरे सारे काम को, पर मैं अपनी बीवी को खुद लेकर जाऊंगा। लावण्या की आंखें खुली की खुली रह गईं, और उससे भी ज्यादा बड़ी आंखें अरुणिमा की हो गईं जब उसने आस्तिक की बात सुनी। आस्तिक ने अरुणिमा की कलाई पकड़ी और उसकी तरफ देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, चले जान।